समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष रहा।
इन इस मन की बात प्रोग्राम और आकाशवाणी मिस्टर मोदी हाइलाइट्स ऑपरेशन सिंदूर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद में शामिल होंगे।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इम्बार्क्स ऑन सबमरीन सॉर्टी एट कारवार नेवल बेस इन कर्नाटका।
उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ानें और ट्रेन सेवाएं बाधित।
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टू मीट हिज यूएस काउंटरपार्ट डोनाल्ड ट्रंप इन फ्लोरिडा टुडे टू ब्रोकर अ पीस डील।
और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में।
Yes, and now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Mann Ki Baat. Well, Prime Minister Narendra Modi has said the world is looking at India with great expectations, largely because of the country's youth who are driving development in science, technology and digital innovation, while also carrying forward India's cultural roots. Addressing the 129th episode of his monthly radio program, Mann Ki Baat, the Prime Minister said, "Today the world is looking at India with great expectations. The biggest reason for this hope is our youth." He said, "India's youth have always had a passion for doing something new and remain equally aware and socially conscious."
भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग।
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया।
देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए।
प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जोश की प्रशंसा की।
यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजे। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
The Prime Minister remarked that 2025 was also a memorable year in terms of sports. Indian men's cricket team won the ICC Champions Trophy.
2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया, भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया, पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती।
Prime Minister Modi also highlighted that India also took a big leap in the field of science and space this year. Group Captain Shubhanshu Shukla became the first Indian to reach the International Space Station.
विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी।
Yes, and Prime Minister also highlighted that the second edition of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue will be held soon, and on the 12th of next month, National Youth Day will be celebrated on the occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary.
स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे।
Well, the 77th Republic Day of the country will be celebrated next month. Prime Minister Modi said that on such occasions, people's hearts are filled with gratitude for the freedom fighters and the makers of the constitution. He said people from every part of the country contributed to the freedom movement, but many of the heroes did not receive the respect they deserved.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए नई दिल्ली में यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष PACR को चालू कर दिया है। इस महीने के पहले सप्ताह में परिचालन उड़ान व्यवधानों के जवाब में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
The Ministry of Civil Aviation has operationalized the Passenger Assistance Control Room PACR in New Delhi to address the grievances of passengers. In a statement, the Aviation Ministry informed that the control room was set up in response to the operational flight disruptions in the first week of this month. The ministry added that the PACR is a mechanism for coordinated grievance resolution that works 24/7, providing support to air travellers. It also said that the PACR allows timely resolution through close coordination with airline representatives stationed in the control room. The ministry further highlighted that over 1,600 grievances have been resolved since the 10th of this month. With Samarth's report, Swati Rakheja for Parikrama.
सिक्किम में माय भारत पहल के अंतर्गत फ्लैगशिप योजनाओं पर कार्यशालाएं नामक जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कल पाकयोंग जिले के कपूथांग सरकारी पॉलिटेक्निक में किया गया। एक रिपोर्ट।
The program intended to inform youth and members of local committees about various centrally sponsored flagship schemes and to facilitate their understandings of procedures for accessing benefits. Mangal Jakhad, Deputy Director, Ministry of Sports and Youth Affairs, My Bharat Gangtok, provided an overview of youth-oriented government programs and discussed role of young people in community-based implementation and outreach. The workshop covered a range of government schemes. Information was provided on eligibility criteria, application procedures, documentation requirements, and available benefits. Participants were given the opportunity to seek clarification through interactive discussions. With Manas Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashwani News, Gangtok.
The 13th Sir Galia International Arts and Crafts Festival has begun at Iringal Craft Village in Kozhikode. We have more from a correspondent.
The 13th Sargalaya International Arts and Craft Festival has begun at Iringal Craft Village in Kozhikode. The fair, which is described as the leading craft festival in South India, is expected to be visited by more than 2 lakh people. The Sargalaya International Arts and Crafts Festival, one of the best fairs of arts and crafts in country, began on December 22nd. The fair will be held at Iringal Craft Village until January 8th. Artisans from 11 foreign countries, including Russia, Tunisia and Egypt, are participating in the fair. In addition, there are more than 400 artisans from various states. The fair will provide an opportunity to know and learn about the characteristics of traditional and modern arts and crafts and the market characteristics of other countries and different states of India. The 11th edition of Sargalaya Arts and Craft Festival is being organized in the wake of the international success of the Netherlands-based Green Destination in the world's top 100 sustainable development story. Sri Lanka will participate in the festival as partner country. The fair features a handicraft exhibition and marketing fair organized by experts as handicrafts exhibition organized by the Development Commissioner of Handicrafts under the Union Ministry of Textiles, and exhibition pavilion organized by the Forest and Wild Department, a handicrafts exhibition of state-winning student talents organized by Samagra Shiksha Kerala. A green mobility expo to promote electric vehicles for the protection of the environment and various arts programs, a Kerala food fair, Uzbekistan food fest, houseboat, pedal and motorboat. The International Handicrafts Fair can make Iringal a great place on the international tourism map and in the world of handicrafts. Suresh VK for Parikrama, Akashavani News, Kozhikode.
आंध्र प्रदेश सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में 10 मेडिकल कॉलेजों का विकास करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ऊर्जा और शहरी अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार में पीपीपी मॉडल की सफलता का उल्लेख किया।
Taking cue from the centre, Chief Minister Chandrababu Naidu directed the officials to take forward the proposed model of public-private partnership in line with the central guidelines. In a recent review meeting with the officials of the Medical and Health Department, Mr. Naidu reiterated that equitable access to healthcare remained the core priority of the government. Andhra Pradesh government's adoption of the PPP model in the medical and health sector has also been endorsed by the Union Health Ministry, emphasizing the need to formulate plans to implement it for the next 3 years. PPP has already begun with the establishment of medical colleges, development of hospitals, diagnostic services, mobile medical services and dialysis services, with projects worth Rs. 2000 crore approved under the VGF scheme. Currently, 919 dialysis centers are operating under the PPP model in 20 states. To take advantage of the expanding PPP opportunities in the healthcare sector, Union Minister J.P. Nadda advised the Andhra Pradesh Health Minister Satyakumar Yadav to establish a dedicated PPP cell for project planning and coordination with the center. Henry for Parikrama, Akashvani, Vijayawada.
Arnav Anupriya Maharshi from Maharashtra has recently received the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar from the President of India. A correspondent from Mumbai has filed this report.
17-year-old Arnav Anupriya Maharshi, a Divyang innovator from Chhatrapati Sambhaji Nagar in Maharashtra, has been conferred Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar for excellence in the field of science and technology. He has been recognized for his innovations that are rehabilitative tools designed for paralysis and cerebral palsy patients. Speaking to Akashvani News, Arnav said his scientific interventions are currently undergoing clinical trials.
Yes, ma'am. So actually, the human trials, the clinical trials of these innovations are underway at a local college of physiotherapy. And one of my innovations, which is an AI software application for the recovery of finger movements of paralysis patients and CP patients, that won the innovation award at the IIT Bombay Tech Fest in 2024.
Arnav's innovation Fair Chance, an AI-based hand paralysis rehabilitation tool, won the International Innovation Award Award at IIT Bombay Tech Fest 2024. His second innovation, Active Hand Wristband, has been selected for Harvard Venture Tech Summer Program 2025 with a global scholarship. Arnav hopes that youngsters in the country develop a strong problem-solving mindset.
My message to them would be to always keep a positive mindset and to always view problems as opportunities to solve.
Arnav stands as an icon of resilience, turning personal adversity into innovation and emerging as an inspiration for his generation. For Parikrama, this is Prarthana from Mumbai.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल अभिषेक से.
Yes, in women's cricket, India will take on Sri Lanka in the fourth T20 International at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram, Kerala today. The match will begin at 7 this evening. Harmanpreet Kaur-led women in blue are already leading the five-match series with an unassailable lead of 3-0. The fifth match of the series will be played on Tuesday at the same venue.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
Between December the 28th and the 30th, 1883, the first national level conference of the organization, the Indian Association, was held in Kolkata. The Indian Association was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose in 1876.
It was the most significant nationalist organization before the formation of Indian National Congress in 1885. The first session of Indian Association was presided over by Ram Tanu Lahiri, a veteran of Bengal's social reform movements. The issues discussed were self-governance, education, separation of judiciary from executive functions, and greater employment of Indians in public service. The objectives of Indian Association were to promote the political, intellectual and material advancement of the people.
It advocated for the unity of people of India on the basis of common political interest and aspirations, promotion of communal harmony and the inclusion of the masses in the great public movement of the time.
The Indian Association expressed its solidarity and decided its merger with the Congress in December 1886.
On the 28th of December 1885, the first session of the Indian National Congress was held in Bombay with 72 delegates. More than just a political party, it was an assembly for politically minded individuals who were interested in governmental reforms. In the first 20 years, the Congress sought greater political autonomy within the empire.
However, after the 1905 partition of Bengal, it raised demands for substantial political reform and eventually for complete independence from the British Empire. The founding members of Congress included Alan Octavian Hume, Badruddin Tayyabji, Umesh Chandra Banerjee, Surendranath Banerjee, Firoz Shah Mehta, Dada Bhai Nauroji, K.T. Telang, G.K. Pillai, P. Rangaiya Naidu and Gopal Ganesh Agarkar. In 1920s, under the influence of Mahatma Gandhi, Congress was transformed from an assembly dominated by Western-educated elites to a mass organization that appealed to diverse sections of the Indian public to fight together for Indian independence.
Today, we also remember eminent Hindi poet Sumitra Nandan Pant, who died on the 28th of December, 1977. Widely referred to as the third pillar of Chhayavad, he was the first Hindi poet to be awarded the Gyanpith. A poet of nature, he was deeply influenced by Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and Aurobindo Ghosh. In an ode to Gandhi from his Gyanpith winner collection, Chidambara, he said,
Bapu tumse sun atma ka tej rashi avahan, has uthte hai rom har se pulkit hote pran, nahi janata, yug vivard mein hoga kitna janakshay. पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय.
In 1960, Pant received the Sahitya Academy Award. The Indian government honored him with Padma Bhushan in 1961. He died on the 28th of December 1977 at Prayagraj, Uttar Pradesh. His childhood house in Kausani, Uttarakhand, has been converted into a museum.
आज टाटा समूह के पूर्वाध्यक्ष रतन नवल टाटा की जयंती है. जब कोई भारतीय ब्रांड दुनिया के लग्जरी कार शोरूम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आसमान तक अपनी पहचान बनाता है तो उसके पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि दूरदर्शी सोच भी होती है। रतन टाटा ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने जोखिम उठाने से कभी वे पीछे नहीं हटे, चाहे फोर्ड से लेकर जगुआर लैंड रोवर की ऐतिहासिक डील हो या आम आदमी के लिए नैनो का सपना। उनके फैसलों ने टाटा ग्रुप की दिशा ही बदल दी। रतन टाटा को देश की सबसे सस्ती कार नैनो का जनक माना जाता है। उन्होंने आम लोगों के लिए 1 लाख रूपये की कार का सपना देखा और 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की। भले ही ये प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रहा और 2018 में बंद हो गया, लेकिन नैनो ने दुनिया को दिखाया कि भारत में इनोवेशन किस स्तर तक हो सकता है।
यस, रतन टाटा वाज ऑफ कोर्स एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ही सर्वड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स फ्रॉम 1991 टू 2012 एंड ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ इंटरिम चेयरमैन फ्रॉम अक्टूबर 2016 टू फरवरी 2017। In 2000, he received the Padma Bhushan, the third highest civilian honor in India, followed by the Padma Vibhushan, the country's second highest civilian honor, in 2008.
Unki netritv mein Tata Steel, Tata Motors, Tata Power, Tata Tea, Tata Chemicals aur Indian Hotels ne bhi kafi pragati ki.
Yes, and moving on, Dennis Wilson passed away on this day in 1983. He was an American musician who co-founded the band The Beach Boys. And Dennis was the only true surfer in the Beach Boys, and his personal life exemplified the California myth that the band's early songs often celebrated. Let's listen in to a hit track, Good Vibrations.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head.
Yes, and Denzel Washington was born on this day in 1954. He's an American actor, producer, director, and Pentecostal minister, known for his dramatic roles on stage and screen. He has received numerous accolades, including 2 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards, 2 Silver Bears, and 1 Tony Award, as well as nominations for a Grammy Award and 2 Emmy Awards. In 2020, the New York Times named Washington the greatest actor of the 21st century. He has also been honored with the Cecil B. DeMille Award in 2016, AFI Life Achievement Award in 2019, Honorary Palme d'Or in 2025, and the Presidential Medal of Freedom in 2025. Films in which he has appeared have grossed over $5.1 billion worldwide. And after training at the American Conservatory Theater, Washington began his career in theater, acting in performances off Broadway. He first came to prominence in the NBC medical drama series Saint Elsewhere from 1982 to 1988 and in the war film A Soldier's Story 1984.
Tum aati ho nav angon ka shashvat madhu vibhav lutati ho bajte nihswar nupur chham chham saanson mein thamta spandan kram tum aati ho antasthal mein shobha jwala liptati ho. आज हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत की पुण्यतिथि है। सुमित्रानंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। सुमित्रानंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता है। उनकी मुख्य रचनाएं रही वीड़ा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकयातन आदि।
Yes, and Sumitranandan Pant was one of the most celebrated 20th century poets of the Hindi language and was known for romanticism in his poems, which were inspired by nature, people, and beauty within. Well, moving on, Susan Lee Sontag passed away on this day in 2004. She was an American writer and critic. She mostly wrote essays but also published novels. She published her first major work, the essay Notes on Camp, in 1964. Her best-known works include the critical works Against Interpretation, 1966, On Photography, 1977, Illness as a Metaphor, 1978, and Regarding the Pain of Others, 2003, the short story The Way We Live Now, 1986, and the novels The Volcano Lover, 1992, and in America, 1999. And we are also remembering John Dan MacDonald, who passed away on this day in 1986. He was an American writer of novels and short stories. He is known for his thrillers, a prolific author of crime and suspense novels, many set in his adopted home of Florida. He was one of the most successful American novelists of his time. MacDonald sold an estimated 70 million books. His best-known works include the popular and critically acclaimed Travis McGee series and his 1957 novel, The Executioners, which was filmed twice as Cape Fear, once in 1962 and again in 1991.
आज सादगी से भरपूर अभिनेता फारूक शेख का जन्म हुआ था। 1973 में आई फिल्म गर्म हवा से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले फारूक शेख ने अपने एक्टिंग करियर की सबसे ज्यादा हिट फिल्म में अभिनेत्री दीप्ति नवल के साथ दी। उसके बाद महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी की शुरुआती सफलता मिलने के बाद फारूक शेख को आगे भी फिल्में मिलने लगी, जिसमें 1989 में आई नूरी, 1981 की चश्मे बदूर जैसी फिल्में शामिल हैं। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी रही। दर्शक इन्हें फिल्मों में एक साथ देखना चाहते थे। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कई फिल्में की, इसमें साथ साथ, कथा, रंग बिरंगी आदि प्रमुख हैं। आइए सुनते हैं फिल्म साथ साथ का ये प्यारा सा गीत जो आज भी लोगों के दिलों को जिंदा रखा है।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
बाजार में भी फारूक का किरदार लोगों ने काफी पसंद किया और वे अलग अंदाज में नजर आए। वहीं फिल्म उमराव जान के गानों ने बॉलीवुड में धूम मचा दी।
इन आँखों के मस्ती मस्ताने हजारों में, मस्ताने हजारों में, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने।
Yes, and John Roger Stevens was born on this day in 1978, known professionally as John Legend. He's an American singer, songwriter, pianist and record producer. He began his musical career working behind the scenes for other artists, playing piano on Lauryn Hill's Everything is Everything and performing as an uncredited backing vocalist in Jay-Z's Encore and Alicia Keys' You Don't Know My Name. He was the first artist to sign with rapper Kanye West's Good Music, through which he released his debut studio album Get Lifted in 2004. Preceded by the hit ballad Ordinary People, the album reached the top 10 of the Billboard 200 and received double platinum certification by the Recording Industry Association of America. Let's listen in to the hit ballad Ordinary People.
Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love, at times we get sick of love, it seems like we argue every day. I know I misbehaved and you made your mistakes, and we both still got room left to grow.
What is a baby gonna do?
And though love sometimes hurts, I still...
Yes, and also Stan Lee was born on this day in 1922. He was an American comic book writer, editor, publisher, and producer. He rose through the ranks of a family-run business called Timely Comics, which later became Marvel Comics. He was a Marvel's primary creative leader for 2 decades, expanding it from a small publishing house division to a multimedia corporation that dominated the comics and film industries. In collaboration with others at Marvel, particularly co-plotters and artists Jack Kirby and Steve Ditko, he co-created iconic characters including Spider-Man, the X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, the Wasp, Fantastic Four, Black Panther, Daredevil, Doctor Strange, Scarlet Witch, and the Black Widow.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।